एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हमारी जो समझ है उसे बहुत गहराई से बदला है।
हाँ बिल्कुल, जॉन स्टुअर्ट मिल की क्लासिक कृति ऑन लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता पर।
सही, ये किताब देखिए 150 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर इसके मुद्दे
हाँ
आज भी उतने ही ताजा लगते हैं।
सही आपने,
बिल्कुल, खासकर जब हम आजकल अभिव्यक्ति की आजादी या फिर वो जो सामाजिक दबाव होता है और निजता के सवालों से लगातार जूझते हैं।
सही कहा आपने। कई बार तो लगता है जैसे मिल ने आज के डिजिटल युग की जो चुनौतियां हैं उनका अंदाजा पहले ही लगा लिया था।
हाँ, ये तो है। तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि मिल के विचार हमारे लिए आज क्या मायने रखते हैं।
बिल्कुल, शुरुआत लेखक से करते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल।
हाँ, जॉन स्टुअर्ट मिल 1806-1873, 19वीं सदी के ब्रिटेन के एक कह सकते हैं कि असाधारण विचारक थे।
असाधारण से भी बढ़कर वो दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, सांसद भी रहे और भी बहुत कुछ।
और उनकी जो परवरिश थी वो तो एकदम अनोखी थी।
हाँ, उनके पिता जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम जैसे बड़े विद्वानों ने उन्हें बचपन से ही मतलब बहुत ही सख्त बौद्धिक ट्रेनिंग दी।
कहते 3 साल की उम्र में ग्रीक सीख रहे थे, सोचिए जरा।
इसी ट्रेनिंग ने उन्हें जबरदस्त तार्किक क्षमता दी, पर एक मुश्किल दौर भी आया उनकी जिंदगी में।
युवावस्था में मानसिक संकट से गुजरे।
हाँ, और कहते हैं कि उस अनुभव ने उन्हें सिर्फ तर्क से आगे बढ़कर जो मानवीय भावनाएं हैं और व्यक्तिगत खुशी है उसके महत्व को समझने में मदद की।
बिल्कुल, और उनके विचारों पर उनकी पत्नी हैरियट टेलर मिल, उनका भी बहुत गहरा प्रभाव था।
हाँ, मिल तो उन्हें ऑन लिबर्टी का एक तरह से बौद्धिक साझेदार या सहलेखक ही मानते थे। और मिल सिर्फ किताबी विद्वान नहीं थे, ये भी जानना जरूरी है।
सही कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी में इतने साल काम किया, सांसद रहे।
हाँ, तो उन्हें प्रशासन और समाज की मतलब जमीनी समझ भी थी, व्यवहारिक अनुभव था।
और ये चीज उनके लेखन में झलकती है, वो सिर्फ हवा में बातें नहीं करते।
बिल्कुल, तो अब आते हैं किताब पर, ऑन लिबर्टी। आखिर ये है किस बारे में?
अगर एकदम सीधे शब्दों में कहें तो,
हाँ, तो ये किताब व्यक्ति की जो आजादी है उसका एक बहुत मजबूत बचाव है।
और सिर्फ सरकार के कानूनों से नहीं,
नहीं, उससे भी बढ़कर जो समाज का दबाव होता है उससे। मिल इसी पर ज्यादा जोर देते हैं। असली खतरा वो मानते थे जिसे वो कहते हैं बहुमत का अत्याचार, टिरनी ऑफ द मेजोरिटी।
अच्छा, बहुमत का अत्याचार मतलब वो जो समाज का एक अनकहा सा दबाव होता है।
हाँ बिल्कुल, जो हमें एक जैसा सोचने, एक जैसा बनने पर मजबूर करता है।
और जो भी अलग सोचता है या अलग तरह से जीता है उसे शक की निगाह से देखता है या दबाने की कोशिश करता है।
एकदम सही, मिल मानते थे कि ये जो सामाजिक दबाव है ये कई बार सरकारी कानूनों से भी ज्यादा घुसपैठ करने वाला और खतरनाक हो सकता है,
क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह होता है।
हाँ, तो किताब का जो मुख्य सवाल है वो यही है कि समाज किसी व्यक्ति के जीवन में कहाँ तक दखल दे सकता है, आपकी मेरी हम सबकी आजादी की सीमा क्या है।
और इसका जवाब मिल एक बड़े ही मशहूर सिद्धांत में देते हैं, हार्म प्रिंसिपल।
हाँ, नुकसान का सिद्धांत। बहुत सरल लेकिन गहरा विचार है ये।
क्या है ये सिद्धांत?
मिल कहते हैं कि किसी व्यक्ति की आजादी में दखल देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जायज कारण है और वो है दूसरों को नुकसान से बचाना।
मतलब अगर मेरे किसी काम से किसी और को नुकसान नहीं हो रहा तो समाज या सरकार मुझे रोक नहीं सकती?
नहीं, मिल के अनुसार किसी का भला करने के नाम पर भी उसकी मर्जी के खिलाफ उस पर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती।
ये तो बहुत बड़ी बात है।
हाँ, यही सिद्धांत इस पूरी किताब की कह सकते हैं रीढ़ है।
चलिए अब किताब की जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। आपने कहा शुरुआत नुकसान के सिद्धांत से होती है।
जी हाँ, प्रस्तावना में ही मिल ये साफ कर देते हैं, वो जो वाक्य है ना,
कौन सा,
किसी सभ्य समुदाय के सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने का एकमात्र उद्देश्य दूसरों को नुकसान से बचाना है।
कितना सीधा, कितना स्पष्ट।
हाँ, और इसका मतलब समझिए, अगर कोई वयस्क व्यक्ति है जो पूरी तरह सोच समझ सकता है और वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे सिर्फ उसी को नुकसान हो रहा है।
जैसे कोई उदाहरण?
मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा मीठा खाता है या खूब शराब पीता है अकेले में।
ठीक है,
तो मिल के हिसाब से समाज उसे समझा सकता है, उसे बहस कर सकता है, उसे मना सकता है, पर उसे रोक नहीं सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता।
अच्छा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी होंगी?
बिल्कुल। पहली बात तो ये कि ये सिद्धांत सिर्फ सोचने समझने वाले वयस्कों पर लागू होता है, बच्चों पर नहीं।
ठीक है।
और दूसरी बात, ये नुकसान क्या है ये भी साफ होना चाहिए।
हाँ, ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहा है। क्या सिर्फ शारीरिक या आर्थिक नुकसान, या भावनाओं को ठेस पहुंचना भी नुकसान है?
मिल का झुकाव इस तरफ है कि सिर्फ किसी की भावनाएं आहत होना शायद काफी नहीं है, जब तक कि किसी के अधिकारों का सीधा हनन न हो रहा हो।
दिलचस्प है। अच्छा, इसके बाद मिल किस पर बात करते हैं?
इसके बाद वो आते हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन। ये शायद किताब का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला हिस्सा है।
हाँ, सुना है इसके बारे में। वो तो लगभग पूरी आजादी की बात करते हैं।
लगभग पूरी। हाँ। वो मानते थे कि किसी भी विचार को दबाना, चाहे वो हमें कितना भी गलत क्यों न लगे, समाज के लिए हमेशा नुकसानदेह होता है।
क्यों? इसके पीछे उनके तर्क क्या थे?
उन्होंने चार मुख्य तर्क दिए हैं, बहुत ही मजबूत तर्क हैं। पहला
बताइए।
पहला ये कि हो सकता है जिस विचार को हम दबा रहे हैं वही सच हो,
जैसे इतिहास में हुआ है गैलीलियो या सुकरात के साथ।
बिल्कुल। अगर हम उसे दबा देंगे तो हम सच से ही वंचित रह जाएंगे। दूसरा तर्क,
हाँ,
अगर वो विचार गलत भी है तो भी उसमें सच्चाई का कुछ अंश हो सकता है। अक्सर पूरी सच्चाई विरोधी विचारों के टकराने से ही सामने आती है।
ठीक है, दो हो गए। तीसरा?
तीसरा तर्क मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। मिल कहते हैं कि मान लीजिए हमारा जो स्वीकृत विचार है वो पूरी तरह सच है, लेकिन अगर उसे कभी कोई चुनौती ही नहीं मिलती, कोई उससे सवाल ही नहीं पूछता, तो वो एक मृत हठधर्मिता बन जाता है, डेड डॉग्मा।
मतलब हम उसे बस रटने लगते हैं बिना समझे?
हाँ, उसका असली मतलब, उसकी आत्मा खत्म हो जाती है। लोग उसे मानते तो हैं पर दिल से नहीं, सिर्फ एक रिवाज की तरह।
सही बात है। और चौथा?
चौथा ये कि जब किसी विचार पर बहस नहीं होती, चुनौती नहीं मिलती, तो उसका हमारे जीवन पर, हमारे चरित्र पर जो असर होना चाहिए वो खत्म हो जाता है, वो बस एक खोखला सिद्धांत बनकर रह जाता है।
कमाल है। तो इसीलिए वो विचारों के खुले बाजार यानी फ्री मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज की बात करते थे।
बिल्कुल। उनका मानना था कि हर तरह के विचारों को आने दो, टकराने दो, इसी टकराव से सत्य और मजबूत होगा और समाज बौद्धिक रूप से स्वस्थ रहेगा।
और यहीं पर उनकी वो मशहूर लाइन भी आती है।
कौन सी?
वो वाली, यदि एक व्यक्ति को छोड़कर पूरी मानव जाति एक मत की हो और केवल वो एक व्यक्ति विपरीत मत का हो, तो भी मानव जाति को उस एक व्यक्ति को चुप कराने का उससे अधिक अधिकार नहीं होगा।
हाँ, जितना उस एक व्यक्ति को, यदि उसके पास शक्ति होती, पूरी मानव जाति को चुप कराने का होता। क्या जबरदस्त बचाव है असहमति के अधिकार का। अकेली आवाज का भी कितना महत्व है।
सच में। अच्छा, विचारों की आजादी से आगे?
विचारों की आजादी से आगे मिल कर्म की आजादी पर आते हैं, मतलब अपने विचारों के मुताबिक जीने की आजादी। इसे वो व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिटी कहते हैं।
यानी जैसा सोचना जरूरी है वैसा जीना भी जरूरी है।
हाँ, लेकिन वही शर्त लागू होती है जब तक दूसरों को नुकसान ना हो।
ठीक है, तो व्यक्तिवाद को वो इतना अहम क्यों मानते थे?
वो इसे मानव कल्याण का, मतलब वेल बीइंग का, एक बहुत जरूरी तत्व मानते थे। उनका तर्क था कि इंसान का सही विकास तभी होता है जब वो अपनी दिमागी और नैतिक क्षमताओं का इस्तेमाल करता है, जैसे समझना, फैसला लेना, खुद पर नियंत्रण रखना।
और ये क्षमताएं तभी इस्तेमाल होती हैं जब हम चुनाव करते हैं।
बिल्कुल। जब हम अपनी जिंदगी के लिए खुद चुनाव करते हैं, न कि सिर्फ बनी बनाई लीक पर या समाज के बताए रास्ते पर चलते हैं। मिल यहां तक कहते हैं कि जो सिर्फ रिवाजों के मुताबिक जीता है, जो समाज जो कहता है वही करता है, वो अपनी इंसानियत का, अपनी मानवीय क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा।
उनकी वो लाइन थोड़ी चुभने वाली है।
कौन सी? बंदर वाली?
हाँ, जो व्यक्ति दुनिया को अपने लिए जीवन की योजना चुनने देता है, उसे नकल करने की बंदर जैसी क्षमता के अलावा किसी अन्य क्षमता की आवश्यकता नहीं होती।
हाँ, थोड़ी कड़ी बात है, लेकिन वो अपनी बात पर जोर देने के लिए कहते हैं। उनका मतलब है कि जो अपनी योजना खुद चुनता है, वो अपनी सारी क्षमताओं का इस्तेमाल करता है।
और इसीलिए वो रिवाजों की निरंकुशता, डेस्पोटिज्म ऑफ कस्टम की इतनी आलोचना करते हैं।
हाँ, उसे वो प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि रिवाज हमें सोचने से रोकता है, हमें भेड़ चाल चलने पर मजबूर करता है।
तो फिर प्रगति कैसे होगी?
प्रगति आती है लीक से हटकर चलने वालों से, एक्सेंट्रिसिटी यानी विलक्षणता, नॉन कन्फर्मिटी यानी समाज के ढर्रे पर ना चलना और जीवन के प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट्स इन लिविंग।
जीवन के प्रयोग मतलब?
मतलब लोग अलग अलग तरह से जीने की कोशिश करें, नए रास्ते तलाशें। मिल मानते थे कि ये समाज के लिए बहुत जरूरी है, इन्हीं से समाज को नए विचार मिलते हैं और वो ठहराव से बचता है।
ये तो काफी क्रांतिकारी विचार है।
बिल्कुल। और फिर किताब के आखिरी हिस्सों में वो समाज के अधिकार की सीमाओं को और साफ करते हैं।
वो जो दो हिस्से बताए थे आपने, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग।
हाँ, जीवन का वो क्षेत्र जो मुख्य रूप से सिर्फ व्यक्ति को प्रभावित करता है, जैसे उसके विचार, उसकी निजी पसंद, उसकी जीवन शैली, इसमें व्यक्ति पूरी तरह आजाद है, समाज दखल नहीं दे सकता।
और दूसरा?
दूसरा वो क्षेत्र जहाँ हमारे काम दूसरों को प्रभावित करते हैं, अदर रिगार्डिंग स्फीयर। यहाँ अगर हमारे किसी काम से दूसरों को नुकसान पहुँचता है या उसका स्पष्ट खतरा पैदा होता है तो समाज या कानून दखल दे सकता है।
लेकिन ये लाइन खींचना हमेशा आसान नहीं होता होगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। मिल खुद मानते हैं कि ये मुश्किल है। जैसे कोई बहुत शराब पीता है तो क्या इससे उसके परिवार को या समाज को अप्रत्यक्ष नुकसान नहीं होता?
हाँ, ये सवाल तो उठता है।
मिल कहते हैं कि दखल तभी जायज है जब उस व्यक्ति के व्यवहार से दूसरों के प्रति किसी स्पष्ट कर्तव्य का उल्लंघन हो, जैसे नशे में धुत सिपाही अपनी ड्यूटी ठीक से ना करे या कोई अपने बच्चों का ख्याल ना रखे।
सिर्फ इसलिए कि हमें किसी की जीवन शैली पसंद नहीं, हम दखल नहीं दे सकते?
मिल के अनुसार नहीं, या सिर्फ इसलिए कि हमें बुरा लग रहा है, ये भी काफी नहीं है।
फिर वो कुछ व्यावहारिक उदाहरण भी देते हैं।
हाँ, आखिरी अध्याय में, जैसे अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार का समर्थन करते हैं कुछ अपवादों के साथ, जहर या शराब जैसी चीजों की बिक्री पर पूरी पाबंदी के बजाय नियमन की बात करते हैं।
और शिक्षा के बारे में?
शिक्षा को वो अनिवार्य मानते हैं लेकिन चाहते हैं कि वो विविध हो। वो सरकारी स्कूलों के एकाधिकार के सख्त खिलाफ थे ताकि सोच में एकरूपता ना आए, विविधता बनी रहे।
कमाल है, मतलब हर जगह विविधता और व्यक्तिगत चुनाव पर जोर।
बिल्कुल, यही उनकी सोच का केंद्र है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या होंगे जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं?
हाँ जरूर। पहला तो मेरे ख्याल से वही नुकसान का सिद्धांत ही है, हार्म प्रिंसिपल।
कैसे प्रासंगिक है ये आज?
देखिए, हमारे समाज में चाहे वो भारत हो या कहीं और, अक्सर लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा या हमारी संस्कृति क्या है के नाम पर व्यक्तिगत पसंद नापसंद पर कितना दबाव डाला जाता है।
हाँ, ये तो रोज की बात है।
ये सिद्धांत हमें चुनौती देता है, ये हमें पूछने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई किसी को ठोस नुकसान हो रहा है या हम सिर्फ अपनी पसंद दूसरों पर थोप रहे हैं।
सही कहा। दूसरा?
दूसरा वो बहुमत के अत्याचार वाला विचार, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी।
ये सिर्फ वोट या सरकार की बात नहीं है?
कोई बिल्कुल नहीं, ये वो सामाजिक दबाव है जो हमारे आस पड़ोस में, हमारे समुदायों में, हमारे परिवारों तक में महसूस होता है जब किसी को सिर्फ इसलिए चुप करा दिया जाता है क्योंकि उसकी राय थोड़ी अलग है,
या उसे अपनी मर्जी से शादी नहीं करने दी जाती, या अपनी पसंद का करियर नहीं चुनने दिया जाता।
हाँ, क्योंकि वो समाज के नियमों या रिवाजों के खिलाफ है। ये उसी अत्याचार का एक रूप है।
तीसरा संदेश?
तीसरा अभिव्यक्ति की आजादी का जो गहरा महत्व है। मिल हमें दिखाते हैं कि असहमत आवाजों को सुनना समाज की सेहत के लिए कितना जरूरी है,
भले ही वो हमें कितनी भी बुरी क्यों ना लगे।
हाँ, आज के जमाने में देखिए, सोशल मीडिया पर जरा सी असहमति पर कैसा हंगामा मच जाता है, या फिर कला साहित्य मीडिया पर पाबंदियों की बात उठती है। मिल के तर्क हमें याद दिलाते हैं कि विचारों को दबाने का खतरा कितना बड़ा है।
चौथा क्या होगा?
चौथा व्यक्तिवाद का महत्व,
इंडिविजुअलिटी,
यानी अपनी राह खुद चुनना, अपनी समझ से जीना,
नकल ना करना।
हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है, अलग अलग धर्म, भाषाएं, जीवन शैलियां, वहाँ ये बात और भी अहम हो जाती है। हमें दूसरों की भिन्नता का सम्मान करना सीखना होगा और हर किसी को अपनी पहचान बनाने का मौका देना होगा।
और पांचवा?
पांचवा रिवाजों के अंधे पालन के खतरे और नए प्रयोगों से होने वाली प्रगति। मिल हमें चेतावनी देते हैं कि सिर्फ इसलिए किसी चीज को सही मान लेना क्योंकि वो हमेशा से होती आई है, ये समाज को जड़ बना देता है, ठहराव लाता है।
और जो नई पीढ़ी के नए विचार हैं या जीने के नए तरीके हैं,
वो सब एक तरह से जीवन के प्रयोग हैं। हो सकता है वो हमें शुरू में अजीब लगें, असहज करें, पर शायद उन्हीं से समाज आगे बढ़ता है।
ये सारे संदेश आज भी ये कितने सोचने पर मजबूर करते हैं।
बिल्कुल, और मिल की किताब में ऐसी कई पंक्तियां हैं जो इन विचारों को बहुत सटीक ढंग से कह देती हैं। हमने कुछ का जिक्र किया भी है।
हाँ, जैसे वो पहली वाली नुकसान के सिद्धांत पर, किसी सभ्य समुदाय के सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने का एकमात्र उद्देश्य दूसरों को नुकसान से बचाना है। ये तो जैसे व्यक्तिगत आजादी का मूल मंत्र है।
बिल्कुल, और अभिव्यक्ति की आजादी पर वो लाइन तो रोंगटे खड़े कर देती है। यदि एक व्यक्ति को छोड़कर पूरी मानव जाति एक मत की हो, तो भी मानव जाति को उस एक व्यक्ति को चुप कराने का उससे अधिक अधिकार नहीं होगा।
ये दिखाता है कि सच का ताल्लुक बहुमत से नहीं है, अकेली आवाज भी सच हो सकती है।
सही कहा। और व्यक्तिवाद पर उनकी वो बात, जो अपनी योजना खुद चुनता है वो अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करता है।
ये हमें अपनी जिंदगी का मालिक बनने की प्रेरणा देती है,
ना कि सिर्फ दूसरों की नकल करने की।
हाँ, और आखिर में राज्य और व्यक्ति के रिश्ते पर वो टिप्पणी, किसी राज्य का मूल्य अंततः उसे बनाने वाले व्यक्तियों का मूल्य होता है।
मतलब व्यक्ति पहले है, राज्य बाद में, राज्य व्यक्तियों के विकास के लिए है।
ये व्यक्ति की गरिमा को सबसे ऊपर रखता है। ये सारे विचार बहुत शक्तिशाली हैं।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन ऊंचे विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, इनका व्यवहारिक इस्तेमाल क्या है?
देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर तो ये हमें हिम्मत देते हैं।
किस बात की हिम्मत? हिम्मत कि हम सामाजिक दबाव के आगे आसानी से ना झुकें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, चाहे वो करियर चुनने की बात हो या अपनी जीवन शैली तय करने की। ये हमें सवाल पूछने का हौसला देते हैं, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या ये सच में मेरी अपनी पसंद है या मैं सिर्फ दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ।
और काम की जगह पर, ऑफिस में,
वहाँ ये ग्रुप थिंक से लड़ने में मदद करता है।
ग्रुप थिंक मतलब?
मतलब जब मीटिंग में सब एक ही बात पर हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो रुक कर सोचना, क्या कोई और नजरिया भी हो सकता है, अलग राय रखने वाले को चुप कराने के बजाय उसकी बात सुनना, ऐसा माहौल बनाना जहाँ लोग बिना डरे अपनी अलग राय दे सकें।
इससे फैसले बेहतर होंगे शायद।
बिल्कुल, और नई चीजें भी सामने आ सकती हैं। ये मिल के विचारों का ही तो एक व्यवहारिक रूप है।
और समाज और राजनीति के स्तर पर,
वहाँ ये हमें सिखाता है कि अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी विचारों को भी सुनना और समझना जरूरी है। सिर्फ अपनी ही तरह के लोगों की बातें सुनने से, जिसे आजकल एको चैम्बर कहते हैं, बाहर निकलना होगा।
और अल्पसंख्यक समूहों के लिए,
उनके अधिकारों का सम्मान करना, उनकी आवाज को जगह देना, ये भी मिल के विचारों से ही निकलता है।
और अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों के बीच,
वहाँ ये हमें उन लोगों के प्रति ज्यादा सहनशील बनाता है जो हमसे अलग हैं, जिनकी मान्यताएं अलग हैं या जीने का तरीका अलग है। ये याद दिलाता है कि ठीक है, सब एक जैसे नहीं हो सकते, और इसी में खूबसूरती है।
हाँ, और आजकल तो ये निजता, प्राइवेसी, ऑनलाइन निगरानी और इंटरनेट पर क्या कहा जा सकता है क्या नहीं, इन सब बहसों के लिए भी मिल के सिद्धांत बहुत काम के लगते हैं।
बिल्कुल, इन पर सोचने से हम शायद एक बेहतर नागरिक और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं।
इस पूरी बातचीत में मेरे लिए जो सबसे हैरान करने वाली बात रही, वो ये है कि मिल ने आज से 150 साल पहले ही समाज के उस महीन लेकिन बहुत शक्तिशाली दबाव को कितनी बारीकी से समझ लिया था।
हाँ, वो जिसे बहुमत का अत्याचार कहा।
बिल्कुल, जिसे हम आज शायद सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में या कैंसल कल्चर जैसी चीजों में देखते हैं।
उनकी दूरदर्शिता कमाल की है।
और मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज की तरक्की, ये तो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
मतलब एक के बिना दूसरा संभव नहीं।
हाँ, कह सकते हैं जब व्यक्तियों को अपनी मर्जी से जीने, सोचने और प्रयोग करने की आजादी मिलती है, तभी समाज असल में आगे बढ़ता है, तभी नए विचार आते हैं, पुरानी गलतियां सुधरती हैं। तो आजादी सिर्फ व्यक्ति के अपने भले के लिए नहीं, पूरे समाज के भले के लिए जरूरी है।
बहुत गहरी बात है।
तो श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़कर जाते हैं।
जरूर।
मिलने जो जीवन के प्रयोगों की बात की, एक्सपेरिमेंट्स इन लिविंग, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच, अपनी कॉलोनी में या अपने ऑफिस में उन लोगों के लिए थोड़ी और जगह कैसे बना सकते हैं जो लीक से हटकर सोचते हैं या जीते हैं,
खासकर तब जब उनके तरीके हमें थोड़े अजीब लगते हों या हमें उनसे थोड़ी असहजता महसूस होती हो।
हाँ, क्या हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए प्रस्तुत है एकत्र फाउंडेशन द्वारा।